मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रय कन्याश्च जग्गिरे नाकुति देवहूतिश्च मैत्रेय उवाच। मैत्रेय मुनि ने कहा, मनोह तू, मनोह तू स्वयंभू मनु का शतरूपायाम उसकी पत्नी शतरूपा से तिस्त्र है तीन कन्याहा च कन्याएं भी जगधीरे जन्म लिया आकुति ही आकुति नामक देवहूति ही देवहूति नामक च तथा प्रसूति ही प्रसूति नामक इति इस प्रकार विश्रुताः विख्यात। अनुवाद तात्पर्य अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद कृपया दोहराइए। श्री मैत्रेय ने कहा, स्वयंभुव मनु की पत्नी शतरूपा से तीन कन्याएं उत्पन्न हुई जिनके नाम आकुति देवहूति तथा प्रसूति थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सर्वप्रथम मैं अपने गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को नमस्कार करता हूँ, जिनके आदेश से मैं श्रीमद भागवत के भक्ति वेदांत भाष्य के लेखन की ओर उन्मुख हुआ हूँ, जो अपने में एक महान कार्य है। उनकी कृपा से तीन स्कंद समाप्त हो चुके हैं और मैं चौथे स्कंद को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं भगवान चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व भागवत धर्म के इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया। उन्हीं के माध्यम से मैं छहों गोस्वामियों को और तब दिव्य युगल राधा तथा कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो वृंदावन में गोपों एवं ब्रजभूमि की गोपिकाओं के साथ निरंतर विहार करते हैं। मैं समस्त भक्तों तथा परमेश्वर के समस्त सेवकों को सादर नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में 31 अध्याय हैं और इन समस्त अध्यायों में ब्रह्मा तथा मनुओं द्वारा की गई गौण सृष्टि का वर्णन हुआ है। परमेश्वर स्वयं अपनी भौतिक शक्ति को क्रियाशील बनाकर वास्तविक सृष्टि करते हैं और तब ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा उनके आदेश से विभिन्न लोकों तथा उनके वासियों को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। मनु और मनु जैसी अपनी संतान तथा जीवों के अन्य जनकों का संख्या जनसंख्या की वृद्धि करते हैं। जो परमेश्वर के आदेश से निरंतर कार्यशील रहते हैं। चतुर्थ स्कंध की प्रथम अध्याय में स्वयंभू मनु की तीन पुत्रियों तथा उनके वंशजों का वर्णन है। अगले छह अध्यायों में राजा दक्ष द्वारा यज्ञ किए जाने और उनके विध्वंस किए जाने का वर्णन है। तत्पश्चात पांच अध्यायों में महाराज ध्रुव के चरित्र का वर्णन हुआ है। फिर अगले 11 अध्यायों में राजा पृथु का चरित्र तथा अन्य 8 अध्यायों में प्रचेता राजाओं के कार्यकलापों का वर्णन हुआ है। जैसा कि इस अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, स्वयंभू मनु के तीन कन्याएं थी जिनके नाम थे आकुति देवहूति तथा प्रसूति। इन तीनों पुत्रियों में से देवहूति का वृतांत उनके पति कर्दम मुनि तथा उनके पुत्र भगवान कपिल मुनि के समेत पहले ही दिया जा चुका है। इस अध्याय में प्रथम पुत्री आकुति के वंश का विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा। स्वयंभू मनु ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा के अन्य कई पुत्र थे किंतु मनु का विशेष उल्लेख सबसे पहले इसलिए होता है क्योंकि वे भगवान के परम भक्त थे। इस श्लोक में च शब्द भी आया है जो यह सूचित करता है कि स्वयंभू मनु के इन तीन पुत्रियों के अतिरिक्त दो पुत्र भी थे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामिनिति नामिने। नमः सद्भक्त मणये मणिपुर उद्भवाय च श्रील प्रभुपाद लसद्वाणी प्रचार निरताय च। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतायिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण आंदोलन का तात्पर्य में जिक्र करते हैं कि ये हरे कृष्ण आंदोलन इस संसारबद्ध अवस्था, लोगों की जो संसारबद्ध अवस्था मतलब पापमय जीवन की अवस्था में विप्लव करने वाला है। वास्तव में हरे कृष्ण आंदोलन के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम है सबका एक ही लक्ष्य है, किस प्रकार हम परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो परम है भगवान उनके प्रति हमारी जागृति अनुरक्ति आसक्ति उत्पन्न होकर हम इस अनंत काल से चले आ रहे इस भव बंधन असत में जो हमारा आवेश है उससे मुक्त होकर भगवान के चरणों में आश्रय पाले। श्रीमद् भागवतम वास्तव में कथा क्या है बहुत अद्भुत ढंग से वर्णन हो रहा है। पिछले स्कंद में स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति, माता देवहूति और उनके पुत्र भगवान कपिल देव की अद्भुत कथा वर्णन की, उसकी फलश्रुति के रूप में कल वाले श्लोक में बताया था कि माता देवहूति और कपिल देव की आख्यान का को श्रवण करने से क्या प्राप्त होता है। देखिए प्रत्येक स्कंध की जो फलश्रुति है श्रीमद् भागवत में प्रारंभ से ही, वास्तव में श्रीमद् भागवतम स्वरूपतः क्या है, तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष आवर्तते हरि ही। श्रीमद् भागवतम साक्षात रूप से वांग्मयी मूर्ति है भगवान की, भगवान कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति स्वरूपतः है। किसी वस्तु के वस्तु का निर्देशन करने में उसके स्वरूप और तटस्थ दोनों लक्षणों का वर्णन किया जाता है। तो श्रीमद् भागवतम के बारे में तो बताया कि ये साक्षात भगवान हरि की ही मूर्ति है। श्रीमद् भागवतम के दर्शन मात्र से ही हमें स्वयं भगवान का ही स्मरण, भगवान की ही स्तुति होनी चाहिए। वास्तव में श्रीमद् भागवत का रहस्य जिस भक्त के जीवन में प्रकट हो जाता है, श्रीमद् भागवतम नाम सुनने मात्र से ही भगवान की ही मूर्ति स्फुरित होनी चाहिए। तेनिवे वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष आवर्तते हरि। फिर क्या है, सेवनात्, जिस प्रकार हम कहते हैं ना कि नित्यम भागवत सेवया, सेवनात् श्रवणात् पाठात्। देखिए सेवन में क्या होता है, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात्, और दर्शन मात्र से भी हरिश्चित्तम, हमारे चित्त में भगवान बिल्कुल जैसे आविष्ट हो जाते हैं। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् हरि चित्तम, पूरे आविष्ट हो जाते हैं भगवान, इस प्रकार का वर्णन किया गया है। तो श्रीमद् भागवतम का जो श्रवण है या जो सेवा है, उस उद्देश्य को हमें कभी भी हमारी समझ से, हमारी मति से दूर नहीं होने देना चाहिए। एक एक पद में, एक एक पद में साक्षात भगवान ही विराजमान है। तो उस जब श्रीमद् भागवतम का जो स्वरूप है ये स्वयं भगवान ही है, ऐसा जब कहा गया है, तो वास्तव में श्रीमद् भागवत में है क्या फिर? तो श्रीमद् भागवत में क्या है, तटस्थता है। स्वरूप लक्षण कहने से तात्पर्य यही है कि देखने मात्र से ही भगवान का स्मरण हो, इसलिए श्रीमद् भागवतम स्वरूपत है, स्वयं भगवान ही है। ये तटस्थत है, श्रीमद् भागवतम का कार्य क्या है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के लक्षणों के अंतर्गत दिया गया है। यहां पर तात्पर्य के प्रारंभ में ही प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमद् ब्रह्मा तथा मनुओं द्वारा की गई गौण सृष्टि का वर्णन हुआ है। तो श्रीमद् भागवतम की जो रूपरेखा है, लक्षण है, उसका वर्णन श्रीमद् भागवत के अंतर्गत ही बताया गया है। द्वितीय स्कंध के अंतर्गत आता है कि अत्र सर्गो विसर्गस्य, अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणम ऊतयः मन्मंतरे ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय है। तो श्रीमद् भागवतम स्वरूप तो भगवान ही है, लेकिन उसमें वर्णन क्या है, श्रीमद् भागवतम का कार्य क्या है, श्रीमद् भागवत में क्या विस्तृत, क्या वर्णित हुआ है, उसका भी ध्यान देने योग्य है। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत की कथा उन्हीं चीजों को लेकर, पूरे भगवान का, जिस प्रकार भगवान के स्वरूप का हम स्मरण चरणों से लेकर मुखारविंद और फिर शीश तक करते हैं ना, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम का जो सोपान है, श्रीमद् भागवतम का जो स्ट्रक्चर है, उसमें इस प्रकार वर्णन हुआ है, अत्र सर्गो विसर्गस्य। तो यहां पर विसर्ग जो गौण सृष्टि है, सर्ग क्या है, जो मुख्य सृष्टि है, मूल सृष्टि है, उसे सर्ग कहते हैं। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में बताया है, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महद आदि भी, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महद आदि भी संभूतम, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महद आदि भी आदव लोक से शिक्षया, पता है ना श्रीमद् भागवत में कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने संभूतम षोडश कलम, 16 तत्वों का की उत्पत्ति की, क्यों, सृष्टि की उत्पत्ति करने की इच्छा से। तो वास्तव में भगवान की इच्छा से, भगवान या परमात्मा, वास्तव में सृष्टि क्रम में जो परमात्मा है वो कारण समुद्र साई विष्णु है। इस सृष्टि को भी, संसार को हम विष्णुमय क्यों कहते हैं, क्योंकि अनादिरादिर गोविंद है सर्व कारण कारणम, जो मूल पुरुष भगवान आनंद विग्रह है, उनका साक्षात इस सृष्टि से कोई लेन देन नहीं, इसलिए सृष्टि के अंतर्गत भगवान का जो वर्णन है वो विष्णु रूप से ही है। तो कारण समुद्र साई विष्णु उनकी इच्छा से जब ये जो प्रकृति है ना, त्रिगुणात्मक प्रकृति जब क्षोभित होती है भगवान दृष्टिपात करके ही पंच महाभूतो पंच तन मात्राए इंद्रिया मन इत्यादि इनसे जो महत्त्व की अहंकार की उत्पत्ति होती है इसे सर्ग कहते हैं, क्योंकि ये मूल तत्व हैं सृष्टि के, और सृष्टि के मूल तत्वों से फिर जो विराज पुरुष भाजी के द्वारा जो सृष्टि का फिर चर अचर सृष्टि का जो हमें दृष्टिगोचर होती है ये कार्य, ये गौण सृष्टि है, इसे विसर्ग कहते हैं। तो यहां पर गौण सृष्टि का जो प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि गौण सृष्टि का वर्णन हुआ है, क्योंकि मूल सृष्टि करता तो भगवान ही है, क्योंकि भगवान से ही सभी मूल तत्वों का की उत्पत्ति है, उनको ही फिर क्रियान्वित करके भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा अपने बड़े मस्तिष्क का उपयोग करके इस सृष्टि का कार्य, सृष्टि का जो उद्देश्य है उसे क्रियान्वित करने के लिए, तो सृष्टि के उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए ही श्रीमद् भागवत का स्ट्रक्चर है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम, स्थान क्या है? श्रीमद् भागवतम को हम जो भक्ति की साधना में है, वो श्रीमद् भागवतम का चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में अति महत्व है। तो स्थान क्या है? स्थान एक प्रकार की मर्यादा है, कहते ना हम अपने स्थान में रहो, अपनी मर्यादा में रहो, तो इस सृष्टि को मर्यादा में कौन सकता है? प्रतिपल प्रतिक्षण विनाश की तरफ बढ़ती हुई इस सृष्टि को एक मर्यादा में स्थापित करने से भगवान की जो कीर्ति, भगवान की महिमा स्थापित होती है, वही स्थान है। गति भरता प्रभु साक्षी, क्या है श्लोक, किसी को याद है भगवद गीता का? फिर आगे निवास शरणम सुहित प्रलय प्रलय, हाँ उत्पत्ति को क्या बोलते हैं? स्थानम, फिर स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, इस प्रकार है। तो स्थानम, तो भगवान जो स्थान स्वरूप है, भगवान संतुलन प्रदान करते हैं। यदि सृष्टि में आप विचार कीजिए, अनंत ब्रह्मांडों में कितने अनंत ग्रह उपग्रह गुरुत्वाकर्षण शक्ति भगवान की, भगवान अपनी इस अनंत विस्तार लिए सृष्टि को संतुलन में एक, उससे भगवान की महिमा ही है ना। आज सृष्टि के स्वरूप को देख के होता कि इसको बनाने वाला बड़ा अद्भुत होगा, तो वास्तव में भगवान की महिमा ही प्रकाशित होती है, उसे स्थान कहते हैं। अत्र मतलब इस श्रीमद् भागवत है, अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम। अब भगवान इस सृष्टि में अपने भक्तों की रक्षा तो करते ही हैं, भगवान अपने भक्तों की जो रक्षा करते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करके, उनको संतुलन प्रदान करके जो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उसे ही कहते हैं पोषण। ये श्रीमद् भागवतम के तटस्थ लक्षण है। स्थानम पोषण ऊते है, मतलब कर्म असत वासनाओं के वशीभूत होकर जीव अनंत काल से इस संसार बंधन में जो आ जाते हैं, मतलब असत जो वासनाएं हैं, कर्म वासनाएं हैं, उसे ही उती कहते हैं शास्त्र में। फिर ईशानु कथा, अब देखो यहां पर मनवंतर है ईशानु कथा। तो मनवंतर क्या है? प्रत्येक मनवंतर, अब इसकी कथा तो अनंत है, मनवंतर एक कल्प में 14 मनवंतर बीत जाते हैं। वर्तमान में अभी हम स्वयंभू मनु जो प्रथम सृष्टि के प्रारंभ में या कल्प के प्रारंभ में, क्योंकि ब्रह्मा जी का प्रत्येक दिन उनके 12 घंटे जब विश्राम हो जाते हैं तो उस समय भी उनको भी इतनी विस्मृति हो जाती है, तो हर बार वो सृष्टि का क्रम जैसे पुनः ही चलता है। अनेक प्रकार के प्रलय के बाद में जो सृष्टि है उसका यहां पर निरूपण। तो यहां पर मन्वंतर, प्रत्येक मन्वंतर के अधिपति, भगवान के आश्रित भगवत जन होते हैं। भगवान के पूरे मन्वंतर का शासन चलाना कोई साधारण बात है क्या? तो मन्वंतर के जो अधिपति होते हैं वो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का जो पालन करते हैं वही मन्वंतर है। तो मन्वंतर के अंतर्गत ये स्वयंभू मनु, मन्वंतर के अंतर्गत मनु महाराज की जो उनकी जो राज्य करने की और जो प्रजा पालन रूप भक्ति के प्रचार के अंतर्गत जो यही कथा श्रीमद् भागवत में आगे बढ़ेगी। ईशानु कथा, भगवान के दिव्य अवतारों की महिमा और उनके अनुगत प्रेमी भक्तों की जो गाथा है वो ईशानु कथा है। मन्वंतरे ईशानु कथा, फिर निरोधो मुक्तिर आश्रय है। श्रीमद् भागवत ने बताया कि निरोधो निरोधो अश्य अनुशयनम आत्मानम सह शक्ति भी मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। श्रीमद् भागवतम कहा यही कि जब भगवान बार बार, देखिए ये सृष्टि का क्रम एक बार नहीं अनेक बार चलता ही जाता है। आज भागवत कथा के अंतर्गत ये सृष्टि का क्या प्रयोजन है, श्रीमद् भागवतम का क्या प्रयोजन है, भगवान हमसे विशेष रूप से मनुष्य मात्र से क्या अपेक्षित है, इसके पर विचार किया जाएगा, प्रयास करेंगे समय के अनुसार। तो निरोधो अश्य अनुशयनम, भगवान जब सभी जीवों के साथ सभी आत्माओं के साथ उनके कर्म रूपी उपाधियां जो संसार में आबद्ध करते हैं, कर्म वो उपाधि है ना, सभी उपाधियों के साथ जब भगवान सभी आत्माओं को अपने साथ लेकर योग निद्रा ग्रहण करते हैं वही निरोध है। निरोध ही कितनी अद्भुत चीज कि हम इस संसार में असत पंथ को की तरफ बढ़ी रहे हैं बढ़ी रहे हैं बढ़ी रहे हैं, इसमें एक रोक करने के लिए भगवान पूरी सृष्टि को ही अपने में पूरी सृष्टि का ही सवरण कर लेते हैं, इसलिए से निरोध करते हैं सभी कर्म वासनाओं के साथ सभी आत्माओं को अपने में लीन करके भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। निरोधो अश्य अनुशयनम आत्मानम सह शक्ति भी, फिर मुक्तिर हित्वा अन्यथा, फिर वापस पुनः जब सृष्टि होती है तब वही एकमात्र उद्देश्य क्या है, किस प्रकार इस भव बंधन इस असत्य आवेश से जीव मुक्त, इसलिए पुनः उन्हें नए संस्कार, जिस पर कहते हैं ना कोई व्यक्ति कोई जगह इतना फंस गया हो कि कहीं पे कुछ दिशा दिखे नहीं, तब सब भाई सब कुछ छोड़ के प्रयाण कर लो। जिस प्रकार कोई भयंकर तूफान आ जाता है कोई जगह पर, अतिवृष्टि अनावृष्टि या अकाल, तो सब जो भी अवस्था होती है तो भटकाव ही नहीं, इस भौतिक संस्कृति भौतिक जगत में हर व्यक्ति चाहे रजोगुण में हो तमोगुण में हो सत्वगुण में हो भटकावी ही यथार्थ से, जब तक वो अपने परम आश्रय रूप भगवान के आश्रित नहीं हो जाता। तो कहने का तात्पर्य पुनः जब प्रकृति होती इसी उद्देश्य से किस प्रकार इस भवबंधन से जीव छूटे, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। तो मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, ये अन्यथा रूप क्या है, यही भवबंधन है। तो अन्यथा रूप है कि हमारा जो अविद्या के कारण कहो या इस संसार की त्रिगुणात्मक जगत में हमारी जो आसक्ति है, आसक्ति किस लिए, सुखी होने की, ये भी संसार में इस नश्वर जगत में हम सुखी होने का जो प्रयास कर रहे हैं यही तो अविद्या है। अविद्या जनित आसक्ति पूर्ण जो हमारे संसार कर्तव्य है, हमारी अविद्या जनित जो कर्तव्य है वही असत है। अविद्या जनित आसक्ति पूर्ण हमें जो संसार में है कर्तव्य, मेरा ये संसार में कर्तव्य है, क्योंकि संसार में जिनमें मैं आसक्त हूं, जिनको जिन असत संबंधों को चीजों को मैं अपना मानकर उसके प्रति मेरा उत्तरदायित्व निभाना चाहता हूं, ये जो आसक्ति जन्य कर्तव्य प्रीति है इससे जब छुटकारा मिलता है, श्रील प्रभुपाद जी बताते कि परम दृष्ट्वा निवर्तते, भगवद गीता में बताया है ना कि जब जीव को ये जागृति होती कि मेरा तो शाश्वत प्रेममय संबंध भगवान के साथ है, जो आसक्ति जो अनुरक्ति मेरी संसार के पदार्थ संबंधों में है, माता के रूप में पिता के रूप में पत्नी भाई बंधु इत्यादि, मेरा तो वास्तविक स्थान भगवान के साथ उनके धाम में है। जब ये जागृति होती है श्रीमद् भागवतम के अनुशीलन से, तब कहीं एक कार्य होता है। श्रीमद् भागवतम मनोरंजन की मनोरंजन के लिए नहीं है, वास्तव में श्रीमद् भागवतम तो मनोभंजन के लिए, क्योंकि हमारा मन इस असत आवेश में ही इतना अनुरक्त हो गया है, छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। हम श्रीमद् भागवत की कथा 2-4 घंटे सुन के भी भाई बड़ा आनंद आया, बहुत मजा आया, फिर भाई क्या आनंद आया, बस इतना आनंद आया, बस बहुत बहुत अच्छा सुना जी, लेकिन सुन के मनोरंजन हुआ नहीं। नहीं, श्रीमद् भागवतम वास्तव में जीव के परम कल्याणार्थ ही है। और जीव का परम कल्याण क्या है, किस प्रकार हम जो परम आश्रय स्वरूप जो दशम पदार्थ है श्रीमद् भागवतम के लक्षणों के अंतर, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूप, फिर आश्रय जो सभी के इस सृष्टि के उत्पत्ति पालन विसर्जन सबके जो एकमात्र कारण है, वे ही आश्रय तत्व परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। तो ये जो श्रीमद् भागवतम में जो इन 9 तत्वों का जो वर्णन हुआ है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम हमारे आश्रय तत्व को, आश्रय तत्व में हमारी जागृति हो। स्वर्ग विसर्ग ये सब बढ़िया, लेकिन इसका एकमात्र एकांतिक उद्देश्य है कि हमारे परम आश्रय स्वरूप, हम संसार में अनेक आश्रयों के आश्रित होकर अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, लेकिन वही भ्रांति है। एकमात्र आश्रय तो भगवान श्री कृष्ण ही है। श्रीमद् भागवतम इसी चीज को निर्दिष्ट करने के लिए पूरा विस्तार किया श्रीमद् भागवतम के लक्षणों का, कि हम आश्रय तत्व को समझकर उनके मनसा कर्मणा वाचा उनके आश्रित हो जाए, यही एकमात्र उद्देश्य है। तो यहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखिए कि देवहूति जो स्वयंभू मनु की पुत्री है, उनका आचरण इतना विशुद्ध, भगवान कपिल का उनके पुत्र रूप में आविर्भाव, और जो भगवान की शुद्ध विशुद्ध भक्ति का जो बोध कपिल मुनि ने माता देवहूति को दिया, कितना अद्भुत है। उसके अंतर्गत देखो, भक्ति तो जीव का सहज स्वभाव है ना, सहज स्वभाव को ही अभिधा कहते हैं। इस प्रकार जो 3 तत्व ना, संबंध तत्व, अभिधेय तत्व, वो प्रयोजन तत्व, तो श्रीमद् भागवतम के अंदर जो जीव के लिए जो सहज है, स्वाभाविक है, जो अभिधा स्वरूप है, अभिधा मतलब जो जिस प्रकार कहने मात्र से जो सहज बोध हो, उसे ही अभिधा कहते हैं। तो अभिधेय क्या है, तो भगवद भक्ति ही अभिधेय है। भगवद भक्ति ही हमारा सहज कर्तव्य है, या सहज स्वभाव है, या सहज कृति है। तो उस सहज कृति भगवद भक्ति को उद्भूत करने के लिए, सहज भक्ति का जो भाव जो गुप्त छुपा हुआ है प्रत्येक जीव में, उसे उद्भूत करने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए ही श्रीमद् भागवतम की ये कथाएं हैं। कपिल देव की जो शिक्षा है उसके अंतर्गत शुद्ध भक्ति का जो वर्णन हुआ है वो बहुत अद्भुत हुआ था। उसके अंदर शुद्ध भक्ति का वर्णन बताया कि भगवान कहते हैं अपनी माता को, मद गुणे श्रुति मात्रेण, कितना अद्भुत है। देखिए, हमारे रूप गोस्वामी प्रभुपाद जितने भी आचार्यों ने जो शुद्ध भक्ति का हमें भक्ति रसाम सिंधु इत्यादि ग्रंथों में जो शुद्ध भक्ति के स्वरूप का जो परिचय दिया है, उन सबका आधार श्रीमद् भागवतम ही है। और यहां पर कपिल मुनि, फिर एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण भी शुद्ध भक्ति के स्वरूप का वर्णन उद्धव जी को देते हैं, और उसी के अनुसार रूप गोस्वामी भी देते हैं यहां पर। लेकिन उदाहरण के साथ कपिल देवनी की जो शिक्षा, क्योंकि इतना बड़ा स्कंद पूरा हुआ, तो उससे संलग्न होते हुए ही हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। मद्गुणे श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय, मनोगतिर अविच्छिन्ना, मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगा अंबस अंबुधौ। कितना अद्भुत उदाहरण दिया कि हमारे जीवन में क्या उपादेय है, हमें किस चीज को, किस भाव को लक्ष्य करना चाहिए, यहां पर कपिल देव ने तृतीय स्कंद में बताया। कह रहे कि मद गुणे श्रुति मात्र, हे माता मेरे, मद गुणे श्रुति मात्र, मेरे गुणों के श्रवण मात्र से, जो मैं कौन, जो सबके हृदय में विराजमान हूं, जो सबको प्रेरणा प्रदान करता हूं, जो सबके हृदय में विराजमान हूं, मेरे गुणों के श्रवण मात्र से ही जब मन की गति, हमारी गति जब, यही लक्ष्य होना चाहिए कि ऐसा हमारे जीवन में फलीभूत हो। मद गुणे श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय, मनोगति अविच्छिन्न, अविच्छिन्न मतलब बेरोक, बिना किसी अंतराल के, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी खेचातानी के, मनोगति अविच्छिन्न यथा गंगा अंबसा, जिस प्रकार गंगा का जल अंबुधौ समुद्र की तरह बेरोक होके आगे बढ़ता है कि नहीं, उसी प्रकार हमारे मन की गति, हम जब साधन भक्ति में के अनुशीलन में जब आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मापदंड होना चाहिए कि जब मैं साधन भक्ति का अनुशीलन करते हुए बेरोक मेरे मन की गति भगवान में अनुरक्ति की तरफ बढ़ रही है, या अनेक प्रकार के आवेश, अनेक प्रकार के विचार मुझे खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। तो ये समझ लो, जब तक आवेशों की, विचारों की, त्रिगुणात्मक जगत के त्रिगुणों के का प्रभाव हमारे मन की गति पर है, तो हमारी भक्ति निर्गुणा नहीं है। मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम्बस अंबुधौ, निर्गुण भक्ति योगस्य, निर्गुण भक्ति योगस्य, ये निर्गुण भक्ति का जो स्वरूप है, इसका वर्णन हुआ है। अब इसके आधार पर हम हमारे जो भक्ति का अनुशीलन है, साधन भक्ति, उसके अंतर्गत हमारी प्रगति का हमें सेल्फ एनालिसिस, प्रतिरोध करना चाहिए। अन्याभिलाषिता शुनम ज्ञान कर्मादि अनाभिलो, ये हम बहुत बार बोलते आए हैं। इसको उदाहरण के साथ कपिल देव की शिक्षा के अंतर्गत बताया गया है। तो यदि हमारी अविच्छिन्ना मति भगवान की तरफ नहीं होती, त्रिगुणात्मक जगत के रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के आवेश हमें खींचते हैं भगवान की तरफ एकांतिक होने के लिए, तो उस प्रकार की जो भक्ति है वो त्रिगुणात्मक है। अब कोई कहे कि भक्ति त्रिगुणात्मक कैसे हो सकती है, कपिल मुनि की शिक्षा के अंतर्गत यही देखा गया। भगवान कहते हैं कि इस त्रिगुणात्मक जगत में जो जिस गुण से आवेशित है, भगवान में श्रद्धा करके भी, भगवान में श्रद्धा, क्योंकि मनुष्य मात्र में भगवान के प्रति श्रद्धा है, धर्म की जो वृत्ति है मनुष्य मात्र में है, श्रद्धा करके भी उसका जब आवेश तमोगुणी होता है, तो उसकी भक्ति भी तमोगुणी कहलाती है। तमोगुणी भक्ति के अंदर क्या होता है, ईर्ष्या करके, क्रोध करके, इत्यादि भावों से, अभी भिन्न भाव की भक्ति का तात्पर्य, त्रिगुणात्मक भक्ति भले सत्वगुण में हो, रजोगुण में, तमोगुण में हो, भिन्न भिन्न भाव की है, पृथक भावा। पृथक भावा क्या है कि शुद्ध भक्ति का एकांतिक उद्देश्य तो भगवत प्रीति है, भगवत संतुष्टि है, तो भगवत संतुष्टि को छोड़कर अन्य प्रयोजन है तो वह त्रिगुणात्मक भक्ति है। जब किसी के अनर्थ करने के लिए या अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी पर शासन करने के लिए इस भावना से जो भक्ति भी करे, तो वो तामसी भक्ति है। जो वास्तव में अधोगति दायिनी है। चैतन्य चैतामृत में बताया ना कि हम भगवान के नाम का अनुशीलन करें और साथ में अनर्थ को पुष्ट करते जाएं, तो अनर्थ से अनर्थ रूपी जो घास उग जाती है तो हमारा जो हरि नाम का जो सिंचन है वो घास में पड़ के घास ही उस जल को और खाद्य पदार्थ को जो पोषण जो भक्ति लता का होना चाहिए वो लता तो रह जाती है दुर्बल, और जो अनर्थ रूपी घास उग जाती है वो ही उसे उससे पुष्टि करके उस भक्ति लता को के लिए जो हरि नाम का अनुशीलन है वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। फिर कोई संसार में अपनी उन्नति करने के उद्देश्य से कोई भक्ति साधना करे। देखिए वैदिक संस्कृति में हर व्यक्ति धर्म परायण भक्ति भाव वाला आपको मिलेगा ही, लेकिन मन की स्थिति कहां उसके ऊपर ही हमें जोर करना। स्वरूप तो सभी के हाथ में माला है, सभी के सिर पर तिलक इत्यादि, मंदिर जाना, सत्संग कथा इत्यादि है, लेकिन उनकी मन की गति किधर है इसके ऊपर ही पूरा आधार है। संसार की उन्नति के उद्देश्य से तो फिर उद्देश्य भगवत प्रीति या भगवत संतुष्टि तो नहीं रहा ना, तो वो निर्गुण भक्ति नहीं। जब एकमात्र तो ये निर्गुण भक्ति जिसमें भगवान की प्रीति और भगवान की संतुष्टि, तो ये भी तो फिर सगुण, ये भी तो फिर निष्काम कहां हुई। कोई कह सकता है कि भगवान की प्रीति के लिए भगवान की संतुष्टि के लिए ही हम भगवत भक्ति कहे तो ये भी तो निष्काम कहां हुई, इसमें भी तो सकामता आ गई ना। तो उसको समझाने के लिए श्रीमद् भागवत में बताया कि यही अभिधा है, क्योंकि ये वास्तव में ये कोई लक्ष्य, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये तो जीव का सहज स्वभाव है भगवान की प्रीति के लिए उन्मुख होना। हम जो भगवान प्रीति को के लक्ष्य से विमुख होकर संसार की प्रीति में हमारी मनोगति जो पूर्व जोर से जा रही है वो सहज नहीं है, लेकिन भगवान की प्रीति भगवान की संतुष्टि में ही हमारे आनंद का, जिस आनंद की खोज में है उस आनंद की खोज पूर्णता को प्राप्त होती है, तो वह सहज है। बाकी दूसरे इस संसार में अपने सुख को, सुख में उन्नत होने के लिए जो भक्ति की जाती वो भी राजसी भक्ति, या इस संसार से मुक्त होकर, संसार के भव बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति, सब झंझट से ही मैं मुक्त हो जाऊं, सब संझट से छूट, तो यह संसार में उन्नत होने के लिए या संसार के बंधन से मुक्त होने के उद्देश्य से जो भक्ति की जाती है वो वो सात्विक है। राजसी क्या बताई, संसार में अधिक सुखी होने के लिए, उन्नत होने के लिए जो भक्ति अनुष्ठान किया है वो राजसी है। जो भयंकर क्रोध वशीभूत होकर अन्य आवेश ईर्ष्या किसी के अनर्थ को लक्ष्य करने के लिए जो भक्ति की जाती है, अब दूसरों का अनर्थ करने में पहला अनर्थ तो खुद का ही होता है ना, तो वास्तव में जो अंधकार में जो जीव को अंधकार की तरफ ले जाता है, भले दिखने में भक्ति भाव संपन्न हो, भक्ति के अनुष्ठान में हो, लेकिन उसका लक्ष्य उसकी मनोगति यदि किसी के लिए अनर्थ बुद्धि परायण है तो वह तमोगुणी है। और संसार में संसार के कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए के उद्देश्य से जो भक्ति है वो भी कौन सी है, सत्वगुण में है, निर्गुण भक्ति नहीं है। निर्गुण भक्ति तो जो एकांतिक कृष्ण परायण है, एकांत कृष्ण प्रत्यार्थ, कृष्ण संतुष्टि के लिए अनुष्ठित और अनुशीलित है, वही भक्ति श्रीमद् भागवत में ग्राह्य है, उपदिष्ट है। तो इस चतुर्थ स्कंद में भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि अद्भुत जो आख्यान ध्रुव महाराज का है, पृथु महाराज का है, स्वयंभू मनु के जो वंशजों का पूर्ण वर्णन है, धीरे धीरे आगे उसमें बढ़ा जाएगा। प्रभुपाद जी ने अंत में कहा है कि ब्रह्मा जी के अन्य कई पुत्र थे, किंतु मनु का विशेष उल्लेख सबसे पहले इसलिए होता है क्योंकि वे भगवान के परम भक्त हैं। तो ये मन्वंतर को पूरा चलाते हैं, उसके अधिपति होते हैं, तो भगवान के भक्त हुए बिना भगवान के उद्देश्य को कैसा पूर्ण कर सकेंगे। श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंध में जो नव योगेंद्रों की कथा है उसके अंतर्गत एक अद्भुत बात आती है। राजा निमि या जनक प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, भगवान ने ये सृष्टि बनाई ही क्यों जो इतनी विचित्र है, जिसमें जीव अनंत काल से ऐसा फंसा रहता है, ऐसी सृष्टि बनाई क्यों? डायरेक्ट ही अपने अपने बोध को उजागर उसके हृदय में कर देना था ना। ऐसा लगता है कि वास्तव में जीवों की स्थिति जगत में देखते हुए ही लग रहा है कि भगवान ने जीवों को अपनी मनमानी, अपनी भोग इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ही बनाई है। ये भगवान की माया इतनी अद्भुत है, बड़े बड़े योगेश्वरों को भी मोहित करती है, तो फिर साधारण जीवों की तो क्या अवस्था? ये कुछ समझ नहीं, ऐसा प्रश्न है। उसके इस प्रश्न के उत्तर में जो अंतरिक्ष ऋषि जो उत्तर देते हैं बहुत अच्छा है। वे कहते स्वयं मात्रात्म प्रसिद्ध है। हे राजन, ऐसा मत समझना कि इंद्रिय तृप्ति मात्रा और आत्म प्रसिद्ध है। मात्रा मतलब इंद्रियों, इंद्रियों की खुद, स्वय मतलब जिनका आधिपत्य है। हम सोचते हैं कि ये इंद्रियों के ऊपर मेरा आधिपत्य है। ऐसे आधिपत्य भाव से जो इस संसार में पुष्ट होना चाहता है इंद्रियों की तृप्ति के लिए, ऐसा ही लगता है कि वाह भाई, सब सब अपनी मनमानी, अपने स्वभाव के अनुसार सब अपनी इस भोग वृत्ति में ही लगे हुए हैं। लेकिन स्वयं मात्र आत्म प्रसिद्ध, साथ में आत्म प्रसिद्ध के लिए भी है ये सृष्टि। दूसरे जीवों के लिए, अन्य योनियों के लिए, तो जो भोग योनियां हैं सभी, देव योनि भी, पशु योनि भी, बाकी सब योनियां भोग योनि है, लेकिन मनुष्य एकमात्र कौन सी योनि है? इसे कर्म योनि कहिए या योग योनि कहिए, आत्म प्रसिद्ध है। आत्म प्रसिद्धता, आत्मा की पूर्ण संतुष्टि, आत्मा के परम कल्याण के उद्देश्य से ही इस सृष्टि को भगवान ने बनाया है। इस सृष्टि के अंतर्गत मनुष्य के लिए ही ये सब सभी प्रकार के उदाहरण, आख्यान, उपाख्यान सब देकर मनुष्य को ही जब अपना परम स्वार्थ लक्षित होता है कि ओहो, जब भगवान ने उसे उसके परम स्वार्थ को पुष्ट करने के लिए जो भगवान ने व्यवस्था की है, जब ये चीज उसकी अनुभूति में, समझ में आती है जब मनुष्य की, तब वो भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और जो अपनी इतने अनंत काल तक जो कृतज्ञ रहा, उसमें उसको बड़ा ही क्या होता है, ग्लानी महसूस करके जब भगवान की अनुगत होने के लिए ही ये पूरी व्यवस्था है। तो कहा कि स्वयं मात्र आत्म प्रसिद्ध है, आत्म प्रसिद्धता के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला है। क्योंकि भगवान ने जो अन्य योनियां हैं, जो भोग योनि के रूप में अपने आप ही उनका प्रमोशन होता ही रहता है, लेकिन मनुष्य योनि ऐसी है कि इसमें यदि हम मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि मनुष्य बड़ा चतुर है ना, वास्तव में इतना होशियार है। वो एक कहावत है कि मनुष्य ही डेढ़ होशियार, उसको क्या बोलते हैं हिंदी, डेढ़ होशियार, कि वो जरूरत से ज्यादा होशियार है। तो जरूरत से ज्यादा होशियारी होने से क्या होता है, वो मनुष्यवत तो व्यवहार नहीं करता, उसका व्यवहार पशुवत हो जाता है। बोलता है कि मैं तो इतना बुद्धिमान हूं कि साधारण पशु जैसा करते हैं, मैं तो साधारण मनुष्य तो मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं, मैं तो पशु जैसा भी व्यवहार कर सकता हूं। कोई व्यक्ति यदि कुत्ते की तरह भौंके तो उसे देखने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं ना, या कोई पशु पक्षी की आवाज निकाले। तो वास्तव में श्रीमद् भागवतम क्या हमें मार्गदर्शित करती है कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग, तो मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का क्या प्रयोजन है, उससे च्युत होकर जब पशुवत उसका व्यवहार होने लगता है, तब बड़ी ग्लानि, बड़ी विडंबना उपस्थित हो जाती है, और भगवान उससे देखकर बड़े ही संकोच होता है भगवान को, अरे रे ये तो अनर्थ। लेकिन अन्य योनियों में भगवान ने कहा कि जो योनियां चल रही, लेकिन मनुष्य योनि को बनाकर भगवान ने कहा इसे मैंने पुष्ट किया है विशेष बुद्धि से, जिससे वो परमार्थ क्या है, परम लाभ क्या है, ब्रह्मावलोकनम तत्र तैस्तै पुरुषम विधाय। सभी योनियों को बनाकर भगवान ने मनुष्य को बनाया। ब्रह्मावलोकधिष्णम मुदम आपदेव है। और भगवान तुष्ट हुए कि ओहो कम से कम एक व्यक्ति को तो, एक योनि तो ऐसी बनी जो इस सृष्टि के प्रयोजन को समझने में समर्थ है। धिष्णम इस प्रकार ही बुद्धि संपन्न करके मैंने इस मनुष्य को बनाया। उस संपन्न बुद्धि का उपयोग ये तो करेगा, भगवान ऐसी अपेक्षा रखते हैं मनुष्य मात्र से, क्योंकि मनुष्य योनि पाके भी लब्ध्वा सुदुर्लभम, इसको पाके भी यदि हम इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवतम के मार्गदर्शन, श्रीमद् भागवत मार्गदर्शन के हमें प्रेरित करता है। श्रीमद् भागवतम की कथा, श्रीमद् भागवतम का अनुशीलन हमें हमारे मनुष्यत्व को जागृत करता है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत है, अरे अब तो मनुष्य तुम बन गए, उठो जागो, जिस उद्देश्य से तुम आए हो उसे समझो, उसे समझ के ही तुम भगवान को प्रसन्न कर पाओगे। तो वास्तव में मनुष्य मनुष्य बनकर ही, मनुष्य बनना अर्थात उस भगवद अनुरक्ति रूपी परमार्थ को में जागृत होकर ही हम भगवान की संतुष्टि को पुष्ट कर सकते हैं। भगवान की संतुष्टि में, भगवान की संतुष्टि के लिए हमारे जीवन का जो प्रयोजन है उसे सफल कर सकते हैं। और इसी के, इसी लक्ष्य को पुष्ट करने के उद्देश्य से ही श्रीमद् भागवतम की कथा लगातार इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ में अनुशीलन के रूप में, मनोरंजन के लिए नहीं, मनुष्य जीवन के परम लाभ को, परम लाभ की तरफ हमारी मनोवृत्ति को मोड़ने के लिए, हमारी मनोवृत्ति जो त्रिगुणात्मक जगत के आवेशों से पीछे खींची जा रही है, उसे एकांतिक मनोयोग से भगवान के चरणों, जो भगवान जो परम आश्रय स्वरूप है, भगवान जो परमानंद के आगार हैं, जिस परमानंद की खोज में ही हम इस संसार के आवेश में, संसार में अनुरक्ति जो अनंत काल से चल रही है, उस अनुरक्ति में हर अवस्था है वह दुखमय है। हम सुख भी प्राप्त करते हैं, कोई भी सुख अमिश्र नहीं है, दुख मिश्रित सुख ही है। तो जो दुख मिश्रित सुख है, वास्तव में दुखों से जब हमें किसी प्रकार की शांति या दुखों की जब उपरांत आती, उसे ही हम सुख मान के, सुख मान नहीं, जो जो परमानंद, जो वास्तव में आनंद है वो अखंड है। उस आनंद का स्पर्श होते ही फिर हम निरानंद स्वरूप, ये जो संसार की अवस्था है उसमें हमारी अनुरक्ति छोड़ देंगे, अवश्य छोड़ देंगे। और हमारी वास्तव में भगवान के चरणों में यही कातर भाव से प्रार्थना है, हे भगवान मेरी अनुरक्ति आपके चरणों में हो जाए। भगवान आप ही परमानंद स्वरूप है, फिर भी इस निरानंद स्वरूप इस जगत में मेरी जो अनुरक्ति है उसे आप छुड़ा दीजिए। भगवान से कातर भाव से हम इसी प्रार्थना करें, यही निर्गुण भक्ति है। जबकि धार्मिक व्यक्ति भी भगवान से भक्ति त्रिगुणात्मक ही करता है कि भगवान मेरे लिए ये हो जाए, भगवान मेरे लिए वो हो जाए, मेरे लिए ये हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए या मुझे शांति हो जाए, मेरा जीवन इस प्रकार जो बिखरा हुआ है वो संभल जाए। ये सब त्रिगुणात्मक भक्ति योग है। निर्गुण भक्ति योग तो भगवान में साक्षात अनुरक्ति है। उस भगवान में साक्षात अनुरक्ति की हम कातर हृदय से प्रार्थना करेंगे तो आनुषंगिक रूप से ही जिन चीजों की मांग हमारे मन में घर करी आई है अनंत काल से, उनका निवारण या क्या कहे, उनका जो एडजस्टमेंट है वो अपने आप हो जाएगा। हमें तो मुख्य वस्तु को पकड़ के आगे बढ़ जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्ण महामंत्र की पुकार के माध्यम से हमें भगवान के चरणों में अनुरक्त मांग लेनी है कातर भाव से। भगवान के चरणों में हम जब अनुरक्ति मांगेंगे तो दूसरी मांगों का समाधान अपने आप ही आनुषंगिक रूप से हो जाएगा, उसके लिए अलग मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। इस शुद्ध भक्ति योग को स्थापित करने के लिए ही श्रील प्रभुपाद जी ने और उनके अनुगत सभी भक्तों गुरु वृंदों ने हम सभी को जो अवसर प्रदान किया है उस लाभ से लाभान्वित होकर इसका परिचय, ये जो हमें खोज हुई ना, ये हमें खोज में मिला ना, मनुष्य जीवन पाकर प्रभुपाद जैसे महापुरुषों के की संस्था के सानिध्य में आके हमें एक खोज स्वरूप अद्भुत धन मिला है। धन की जानकारी तो बहुतों को, लेकिन धन की प्राप्ति कैसे हो, उसका जो साधन क्रम जो पुष्ट किया है प्रभुपाद ने, स्थापित किया है, उसकी जानकारी भी हमें येन केन प्रकारेण, जो धन को जानते तो हैं क्योंकि वैदिक संस्कृति के अंतर्गत भगवान के प्रति चेतना सबकी, लेकिन उस धन को, धन क्या है, भगवान के चरणों में जो अनुरक्ति रूपी उस धन को हम किस प्रकार उपलब्ध कराएं, इसकी जानकारी हमें विस्तारित भी करनी है। यही उद्देश्य हम सभी का है। ऐसा कहकर, इतना कहकर आप सभी के धैर्य के लिए आप सबको धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर भक्तवृंद की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, त्रुटि, दोष कुछ कहना चाहे तो अवश्य कहें, कहिए प्रभु। बद्ध अवस्था में ही, बद्ध अवस्था से ही तो हमें आगे बढ़ना है। मुक्त ही होगी तो फिर वो तो भक्ति कर ही रहा है। एकांतिक, एकांतिक, हाँ, जो अभिधा है, ये जो अभिधेय जो है ना, क्योंकि ये सहज है। जिस प्रकार हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का अनुशीलन करे थे, उसमें बताया भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जिस प्रकार कोई कहे कि 10 घोड़े आ रहे हैं, अब 10 घोड़े आ रहे हैं ये सुनने मात्र से ही 10 घोड़े आ रहे हैं, इसमें इसका कोई विश्लेषण की तो आवश्यकता है नहीं ना। वेदों के वाक्यों को अभिधा वृत्ति से, मतलब जो सहज बोध होता है, सुनने मात्र से जो बोध होता है सहज, उसी प्रकार जीव की जो अभिधा सहज वृत्ति है वो भक्ति है। जीव की, जीव मात्र की, क्योंकि भगवान से ही उसका शाश्वत प्रेममय संबंध है, तो उसकी जब जागृति सहज रूप में भगवान के प्रति ही धावित होती है, गंगाम बदोसो, तो इस बद्ध अवस्था में, अनंत काल से हैं, बद्ध अवस्था में रहते हुए भी हमारी मनोयोग, हमारी कातर प्रार्थना, हमारा मन का भाव, हमारी जो नाम साधना का जो अनुशीलन है, लक्ष्य के प्रभु आपके चरणों से जोड़ लो, आपके आपके कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस है, प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्त ही कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते है। अभी अभी मेरी बुद्धि ठीक लग गई, सत्संग सुना है, अभी मेरे मन को आपके चरण कमलों में, मेरे मन रूपी हंस को आपके चरण रूपी कमल में प्रवेश करने दीजिए, अनुरक्त होने दीजिए, बाद में क्या ठिकाना। तो कहने का तात्पर्य, बद्ध अवस्था में ही तो हमें सत्संग के माध्यम से निर्गुण भक्ति योग को पकड़ लेना है। भक्ति के जो आनुषंगिक लाभ है, त्रिगुणात्मक भक्ति, संसार की समृद्धि के लिए, मोक्ष के लिए, मोक्ष के उद्देश्य से बहुत से लोग भक्ति करते हैं, वह भी निर्गुण भक्ति नहीं है, मुक्ति लाभ के लिए, संसार लाभ के लिए, या संसार में अपने आप को, अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए, मनमान करने के लिए भक्ति करूंगा और भगवान से मांग लूंगा, है कि नहीं, वह अशुद्ध भक्ति है। त्रिगुणात्मक गुणों के आवेश के अंतर्गत है विशुद्ध भक्ति, मतलब जो मेरा सहज, जो आत्मा का सहज स्वभाव है, आत्मा जिसके लिए, जिसकी खोज के लिए ही अनंत काल से भटक रही है, जब उन श्रीमद् भागवतम के अनुशीलन से, जब उन परम आश्रय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का जब परिचय होता है जीव को, तब उसका मन एकमात्र यही चाहे। बद्ध अवस्था में भी एकमात्र हम, मुझे मालूम है कि मैं भक्ति करते, मैं चाह रहा हूं कि मुझे ये मिले भगवान, मुझे ये मिले, ये घर मिल जाए, एक पुरुष बोलता मुझे स्त्री मिल जाए, ये चाहते हुए भी उसे मनोयोग से कहना प्रभु मैं क्या करूं, वास्तव में चाहना तो मुझे आपको ही चाहिए, तो ये जो दूसरी चाहे मुझे खींच रही है, उससे मेरा पल्ला छुड़ाओ, मुझे तो आपके चरणों में ऐसा बांध लो, ऐसा ही बांध लो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, आपकी ही खुशी के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए ही, आपके लिए ही मैं ये भक्ति का अनुशीलन करूं, यही निर्गुण भक्ति होगा। हरे कृष्ण प्रभु। आपका प्रश्न, इसका फल अधोगति है। हाँ भक्ति, भक्ति तो स्वरूप तो है ना, स्वरूप में भक्ति है, तटस्थता है वो वास्तव में भक्ति नहीं है। नहीं 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 नहीं, अधोगति का लक्ष्य क्या है भक्ति? हम जो भक्ति का अनुशीलन करते हैं उस लक्ष्य को ध्यान में रखते ही हैं कि भगवान में हमारी प्रीति बने, इसी उद्देश्य से करते हैं ना हम। भाई 4-5 तो करते हैं ना, तो ये तो करने वाले पर हैं, ये तो व्यक्तिगत है। वास्तव में हमारी मन स्थिति, भक्ति निर्गुण है या सगुण, ये स्वरूप से मालूम नहीं होगा, हमारी मन स्थिति के आधार पर ही इसका निरूपण होगा। नहीं अहंकार, ये तो वास्तव में ये तो केवल साधना में अनुशीलन लोगों के जीवन में किस प्रकार आए, अंततः तो स्वयं समझकर ही भगवान की संतुष्टि और भगवान की प्रीति को लक्ष्य करके, भले वो 4 माला करे 2 माला करे 16 माला करे तो बहुत उत्तम, और भी ज्यादा कर दे। हमारी जो साधना है अनुशीलन, वो 16 माला पे रुक नहीं जाता। जिस प्रकार कोई कहे आज तो मैंने 16 माला कर ली, आज तो मेरी माला पूरी हो गई, ये जो मनस्थिति है ये भी बराबर नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कीर्तनीय सदा हरि। कोई 16 माला करके ऐसा लगे जैसे जेल से छूट गया हो, वैसी मनस्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। कोई कहे आज तो मेरी माला पूरी हो गई, तो ये तो बहुत ये अच्छी मनस्थिति नहीं है कि आज मेरी माला पूरी हो गई। अरे माला ही पूरी नहीं होती, ऐसा सोचना चाहिए है? कोई भक्त जब कोई भक्त से मिले और पूछे भाई कैसे कुशल मंगल है कि नहीं, तो कुशल मंगल तो बाकी सब तो ठीक चल ही रहा है, भजन ही नहीं हो पा रहा है, भजन में अतृप्ति, यही शुद्ध भक्ति का लक्षण है। और जब व्यक्ति किसी चीज में के लिए अतृप्त रहेगा तो उसमें दैन्य भी आएगा। हम किसी चीज को संपन्न करके ही अहंकार आता है कि मैंने 16 माला कर ली, मैंने 32 कर दी, मैंने तो निर्जला उपवास कर लिया, मैं ये कर लिया, जो ये संपन्न हुए ना, हम जिस चीज को संपन्न पूर्ण करके हमें आवेश आता है कि मैंने ये उपलब्ध कर लिया। लेकिन शुद्ध भक्ति का जो स्वरूप लक्षण क्या है, कोई व्यक्ति वास्तव में शुद्ध भक्ति उसकी मन स्थिति है, उसका लक्षण उसकी दैन्य भाव में होगा। दैन्य कौन व्यक्ति होगा जो ये सोचेगा मैं तो इसे पूरा नहीं कर पाया, मैं तो उसे असंपन्न हूं, मुझे तो वह अभी भी अप्राप्त है। तो शुद्ध निर्गुण भक्ति योग का जो स्वरूप लक्षण किसी व्यक्ति में आप देखना चाहे तो वास्तव में उसमें दैन्यता दीनता लक्षित होगी, उसके व्यवहार में, उसके चाल चलन में, उसके सब कुछ कार्य में, क्योंकि वो सोचेगा सब कुछ तो चल ही रहा है, परिवार भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वो चलता रहेगा, भजन ही नहीं हो पा रहा है, भजन ही नहीं, सब भगवान, लेकिन भजन भगवान चलाएंगे क्या, बाकी सब भगवान चला रहे हैं, संसार भगवान चला रहे हैं, वो भी चला रहे हैं, लेकिन भजन तो स्वयं को ही चलाना पड़ेगा। तो जब भजन भगवान के लिए एकांतिक भाव मनोयोग होगा, वही निर्गुण भक्ति योग है। कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, न सोचना चाहिए कि मैं उत्तम भक्त नहीं बन सकता। ये कहीं भी श्रीमद् भागवतम में हमारे आचार्यों महापुरुषों श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में कहीं भी ये पुष्ट नहीं हुआ है कि ऐसा हम सोचे कि हम उत्तम भक्त नहीं बन सकते। हमें उत्तम भक्त बनना है, लक्ष्य तो वही होना चाहिए। मुझे उत्तम भक्त बनना, लेकिन मुझे रोना इसी बात का है कि अभी तक मैं उत्तम भक्त नहीं बन सका। ये मन स्थिति, ये हमारा एटीट्यूड, मन की गति, मन की विचार शैली क्या है कि मुझे उत्तम भक्त बनना है, मुझे भगवान के लिए संतुष्टि, भगवान की खुशी के लिए उपयोगी बनना है। उत्तम भक्त को ही भगवान अपना मानते हैं ना, आत्मवत, आत्मा से भी अधिक प्रिय, नैवात्मा से यथा भाव। उद्धव जी को भगवान कहते हैं कि भगवान कहते मुझे मेरी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है जितनी उद्धव तुम हो। तो उत्तम भक्त को भगवान अपने से भी ज्यादा प्रिय बन, तो मुझे भगवान को प्रिय कर बनने के लिए कितना प्रिय बनना है, उत्तम बनना है ना, मुझे उत्तम बनना है, मुझे यही रोना है। हम भक्ति करके भी संसार के लिए ही रोते हैं, भक्ति करके भी इसके लिए, उसके लिए, पड़ोसी के लिए, इस काम के लिए, मन के लिए, शांति के लिए, अशांति के लिए रोते हैं। मैं उत्तम भक्त नहीं बन पाया, इसके लिए रोना है। और दैन्य तभी तक रहेगा जब तक ये भान रहेगा कि मैं अभी तक उत्तम भक्त नहीं बना, अभी तक मैं उत्तम भक्त नहीं बन सका। ये जब भान रहेगा हमारे मन में, तब हमारे जीवन के व्यवहार में दीनता कभी नहीं छूटेगी हमसे। और जब हमें इस बात का स्मरण भी हो गया कि मैंने कुछ उपलब्ध कर लिया, मैंने 16 माला से 20 माला करनी शुरू कर दी, मैंने मंगला आरती बिना रुके लगातार की, अपनी उपलब्धि का जब जब विचार आएगा, तब हम दीनता के भाव से अहंकार की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी तक मैं उत्तम भक्त नहीं बन सका, ये जब भाव जागृत रहेगा हमारे जीवन से दीनता कभी नहीं जाएगी। और जिस चीज से हम अप्राप्त हैं उसके लिए अतृप्त अवश्य बने रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम।